نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه اللهم صل على سيدنا مولانا محمد المهدي للجود والكرم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه وسلم أما بعد نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ روز قیامت میں کچھ ایسے لوگ ہوں گے کہ جن کے چہرے ان کی پیٹوں کے پیچھے پھیر دیے جائیں گے. اللہ اکبر, یہ ایک عذاب ہوگا اللہ کی طرف سے انسانوں کو, اور عجیب شکل کا یہ عذاب ہوگا. ساری دنیا کے سامنے وہ لوگ ہوں گے اور ان کے چہرے جو ہے ان کی پیٹوں کی طرف پھیر دیے گئے ہوں گے. مسلمان ہوں گے, کلمہ بھی پڑھتے ہوں گے, نمازیں بھی پڑھتے ہوں گے, سارے اعمال جو ہیں وہ کرتے ہوں گے, مسلمان جو ہوئے. تو یہ جو بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی, ایک بہت بڑی تنبیہ ہے امت کے لیے کہ افسوس, قرآن بھی ہو, ایمان بھی ہو, سب کچھ انسان کے پاس موجود ہو اور پھر اس قدر رسوائی ہو روز قیامت میں کہ ساری دنیا دیکھے کہ اس انسان کے چہرے جو ہیں اس کی پیٹھ کی طرف پھیرے گئے ہیں. بڑا منفرد قسم کا عذاب ہوگا. غور طلب بات ہے کہ کتنا بڑا گناہ ہوگا یہ, اس کی سزا ہوگی. آپ سوچیں اس کی سزا کے اعتبار سے, آپ سوچیں کہ کس قدر بڑا گناہ ہوگا جو انسان کرتا ہوگا جس کو اتنی بڑی رسوائی والی سزا دی جائے گی انسان کو, ہے یا نہیں؟ کتنا بڑا گناہ ہوگا. لیکن تعجب ہے, کمال ہے کہ اس گناہ کی نوعیت کیا ہوگی, دنیا میں کرنے کا انداز کیا ہوگا اس گناہ کا. بہت ہی آسان, بہت ہی معمولی. جتنی بڑی سزا ہے اس کے حساب سے تو اس قدر بڑا گناہ ہو سمجھنا چاہیے تھا کہ انسان الرٹ رہتا. لیکن اس کے برعکس اتنا معمولی سمجھا جائے گا اس کو, اتنا چھوٹا ہوگا کہ اس کا کرنا بھی بہت ہی آسان, بہت ہی آسان. کسی چیز کے اہتمام کی ضرورت نہیں اس کی. بلکہ جو لوگ یہ گناہ کرتے ہیں نہ انہیں روزے کا خیال, نہ رمضان کا خیال, نہ ان کو پتا کہ حرم میں ہے یا مسجد نبی کے صحن میں ہے, نہ ان کو پتا کہ ہم طواف میں ہیں یا بے آپ زمزم پی رہے ہیں, نہ ان کو پتا کہ ہم مسجد میں ہیں یا مسجد سے باہر ہیں. کہ کوئی کیفیت ہی کسی چیز کی بھی اس گناہ سے انسان کو نہیں روکتی, بتائیں. اور کرنے میں اتنا آسان, نہ ہینگ نہ کوئی پھٹکری. مثال ہے جیسے ایک سیکنڈ, دیکھیں ایک سیکنڈ, اتنا بڑا گناہ ہے, کتنی بڑی سزا ہے, اور اس طریقے سے یہ گناہ کیا جاتا ہے معاشرے کے اندر. ایک سیکنڈ لگتا ہے اس گناہ کرنے میں. اللہ اکبر, کتنی بڑی بات ہے کہ روز قیامت میں اس گناہ کی سزا کتنی بڑی ہوگی. आज मेरे भाइयों शेर जुम्मा है, बरकतों वाली रहमतों वाली अल्लाह की फजल वाली अल्लाह की करम वाली रात है, रहमतों की बारिश है। अल्लाह सुबहाना ताला ने हमें जमा भी इसी लिए किया है, इसी फिक्र पे जमा हुए हैं कि हम अपने गुनाहों की अल्लाह से तौबा मांगें, अल्लाह के हजूर रोएं और तौबा करें अल्लाह से कि जो गुनाह हमसे हो अल्लाह ताला हमारे माफ़ फरमा दे। यही मकसद है जमा होने का, मैं तो यही मकसद लेकर आता हूँ भाई। ना कोई यहाँ बुजुर्गी है, ना कोई ऐसा मामला है, बस ये है कि कल रोज़े क़यामत में कब्र के अंदर हर मैदान में अल्लाह पाक हमें कामयाब करता चला जाए। जिस गुनाह की मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आए पहले हम इस तरह करें कि अल्लाह के हजूर गिड़गिड़ा के आज की रात दुआ मांगें और अल्लाह से वादा करें कि अल्लाह सुब्हाना ताला इंशाअल्लाह हम ये गुनाह नहीं करेंगे, पक्का वादा कर लें, घबराएं नहीं। क्यों देख रहे हैं आप कि आसान है, इतना आसान है कि तभी लाजमी, मैं नहीं कहता कि हम अपनी बात तो मैं करूं, लेकिन आप हमारे में बदगुमानी नहीं रखता कि आप ये गुनाह करते होंगे, लेकिन इसकी आसानी और इसके ज़्यादा होने की वजह से आदमी सोच सकता है कि कहीं ट्रैप ना हो गया हो, फंस ना गया हो। तो बेहतर यही है कि हम इस सिलसिले में अल्लाह के हजूर वादा करें, इस जिक्र की बरकत से, आज की रात की बरकत से, इस मुकद्दस घड़ियों के अल्लाह हमारी इस पुकार को सुन लें और बकिया ज़िंदगी हम इस गुनाह से बचें। मामूली गुनाह है, हम समझते हैं उसको लगता भी मामूली है। अल्लाह सुबहाना ताला ने इस गुनाह को बाकायदा कुरान में भी इरशाद फरमाया है, बाकायदा इरशाद फरमाया है कुरान में, भला यख्तुब बादकुम बादा, पढ़ा ना कुरान में, भला यख्तुब बादकुम बादा, क्या लोगो, अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि अपने भाई की पीठ के पीछे ऐसी बात ना करो, उसके खिलाफ ऐसी चीज ना कहो, उसके ऐसी नकस ऐब मत निकालो जो उसके लिए तकलीफ का बाइस हो और परेशानी का बाइस हो। ये हमने वादा करना है अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला हम आज की बात वादा करते हैं तुझसे कि हम किसी के बारे में क्यों बात करें, हम वादा करते हैं कि हम किसी इंसान की भी किसी चीज़ के अंदर भी कोई ना नक्स निकालेंगे ना कोई बात करेंगे, किसी आदमी के बारे में क्यों बात की जाते हैं। हत्ता कि यह है कि इतनी छोटी बात भी अगर हम करें किसी आदमी के बारे में, या उसकी कमीज तो देखो किस तरह ऊपर उठी हुई थी, ये भी गिबत है, बोला यक तो बात कहूँगा, ये भी गिबत है, याद रखें इतनी बारीक चीज़ है ये, इसकी वही सजा है जो नबी करीम ने इरशाद फरमाई, वही सजा है। ये ना कहेंगे छोटी हो गई, नहीं, वही सजा है। छोटी सी बात करने की भी इजाजत नहीं, बड़ी तो बड़ी है। तो झूठा है, वो बेनमाजी है, वो फला है, वो फला है, वो फला है, आम कितना आसान है, देखते हैं कुछ जगह हम घंटों घंटों तलावत करने के बाद आदमी जाके आराम से बात कर देते, घंटों घंटों मस्जिदों में बैठने के बाद आदमी आराम से बात कर देते। देखें अल्लाह कुरान फरमा रहे, अल्लाह फरमा रहे, बोला यक तुम बाद कुम बादा अहयुब अहदकुम, अल्लाह ताला कहते हैं साथ, अल्लाह ने भी इसकी सजा बता दी कुरान के अंदर, कुरान में कितनी बड़ी बात होगी, कितना बड़ा गुनाह होगा ये, और कितनी बड़ी सजा है इसकी, और कितना आसान है, और कितनी लज्जत है इसमें। चलते चलते वो इसको देखो, ये अपने आप क्या समझते, उसमें क्या है, क्या फायदा मिला, कुदर क्या फायदा मिला, और नुकसान कितना बड़ा हुआ, नुकसान को देखें और फायदे को देखें, एक सेकंड के इंसान कहां से कहां चला गया। नहीं करनी चाहिए ऐसी बात, अल्लाह ताला मना फरमाते हैं, साथ ही फरमा देते हैं, सजा ही बताई अल्लाह ताला ने बताई सर, हब्बू आदक अन याकुल अल्लाह अल्लाह में आखिर कि जिस वक्त तू किसी इंसान की बात कर रहा होता है उसके पीठ के पीछे होती है ना बात, तो एक बात देखने की कितनी अजीब बात है, मुझे तो ये बात समझ में आई है इस सजा के साथ इसका कितना ताल्लुक है इस गइबत का। जब जो सजा मिलेगी रोज़े क़यामत में अल्लाह के नबी इस वक्त इरशाद फरमाते हैं कि उनके चेहरे जो है उनके पीठ के पीछे होंगे, तो इससे कितनी मुनासिबत मिलती है, एकदम जहन में ख्याल आया कि क्योंकि इंसान के पीठ के पीछे बात की जाती है उनको चेहरों को पीठ के पीछे कर दिया जाएगा। लगता है ऐसे कि दुनिया के अंदर उस बात से ही जो है आखिरत के अंदर उसको रिजल्ट मिल जाएगा, तू पीठ पीछे बात करता था ना उसके कि ये कैसा है ये फला है इसको देखो उसको देखो, इसमें ना कोई दोस्त और दुश्मन कोई तश्खीस नहीं, किसी के बारे में आप कुछ नहीं कह सकते, इजाजत ही नहीं। ये चीज तो उसमें है तभी तो है तुम कह रहे हो, अगर ना हो तो बहुत बड़ा गुनाह और हो गया, तो बहुतान हो गया, था ही नहीं उसमें, है तो हम बात कर रहे हैं। अल्लाह ताला ये फरमाते हैं कि भाई देखो अहिब्बु, जो इंसान जब ऐसी बातें करता है तो क्या होता है, वो अपने भाई का सगे भाई का गोश्त खा रहा होता है। अब कुरान ने कह दिया, अल्लाह फरमा रहे, तो क्या ये नहीं होगा कि तू पसंद कर रहा है, जिस चीज को पसंद कर रहा है कि तू अपने भाई का गोश्त खाए, अजी मैं तो नहीं पसंद करता तो क्यों बात करता है। सोचे जी हम तो नमाज पढ़ते हैं, हम तो फलां करते हैं, अपनी जगह उसके भी हाल देखें, ये गुनाह जो है सारी जिंदगी को हिला देता है, सिर्फ इसी चीज पे अफेक्ट नहीं करता इंसान की, पूरी जिंदगी को हिला देगा, सारी जिंदगी को हिला देगा, हम रोजे क़यामत इतना बड़ा गुनाह है सारी जिंदगी को हिला देगा। भाई ये जो अल्लाह वालों की मजलिस में सुनते आए हैं, बातें सुनते हैं, किताबों में पढ़ते हैं, और हमारे अकाबरीन और सलाफ हम गुजरे हैं, मैं तो अपने सही यकीन के साथ आपके सामने ये बात कर रहा हूं, यकीन के साथ, ये उनके जो अंदाज थे खानकाही जिंदगी के, जिक्र असकार के, अल्लाह वालों के सोहबत में जाने के, किसी का मकसद ये नहीं था कि खिलाफत मिल जाए, किसी का मकसद नहीं है ऊंचे हम जनाब खलीफा मशहूर हो जाएं, या हमारे बहुत नाम हो जाएं, या हमारे फला हो जाएं। उनका मकसद जो था, उनकी जिंदगी उठा के देखे एंड उनका ये होता था कि जिस वक्त दुनिया से जा रहे होते थे तो फिक्र उनको यही लाहक होता था कि मेरी जिंदगी में जो मैंने काम किया, जो कोशिश की, जो मैं गया, उससे मेरा बातिन साफ हुआ या नहीं हुआ। जितने हम किससे सुनते हैं अल्लाह वाल, भाई अपने अकाबरीन की बात कर रहा हूं, सलाफ की बात कर रहा हूं, खुद अपने हजरत की बात कर रहा हूं, आखिरी लम्हे तक आखिरी सांस तक यही फिक्र लाहक था। बड़े बड़े अल्लाह वालों की मौतें आप देखें, देखी भी हैं और सुनी भी हैं और बता भी रहा हूं आप, तो बिल्कुल यकीन के साथ ये बात कहता हूं कि जब हम बड़े बड़े अपने सलाफ की अकाबरीन की बातें सुनते हैं कि जनाब फलां तस्किया करते थे, रातों की इबादत करते थे, खानकाओं में वक्त गुजारते थे, इतना जिक्र अस्कार करते थे, ये सब चीजें क्या थी, फिक्र एक था कि किसी तरीके से ये निकल जाए, गीबत निकल जाए, किबर निकल जाए, हसद निकल जाए, बोकस निकल जाए, ये कोई मामूली चीजें, इसके लिए पूरी जिंदगी दरकार है हमारी, चाहे कि हम इसकी फिक्र ही ना करें। एक जहरी अमाल पर हम जमे रहें, ये फिक्र ही ना हो कि इसको किस तरह गम किया जाए, और उन लोगों की हम जिंदगी उठा के देखें, उनको जहरी अमाल पे कुछ नहीं था, ना घमंड था, ना फिक्र थी, ना ख्याल था, ना तवज्जो थी, हजारों हजारों किताबें लिखी हैं, हजारों हजारें, अभी आप बताओ हज़रत थानवी रहमतुल्लाह की बात, कितनी हजार किताब लिखी है, लेकिन उनके बारे में ये बात है, मुस्तनद बात बता रहा हूं मैं, उन्हीं के खलीफा से बात नहीं बता रहा हूं, कि सबसे ज्यादा जो उन्हें अपने फिक्र था, कितनी किताबें, कितने मामला, कहते सबसे ज्यादा जो उनको फिक्र रहा, उनके खलीफा बता रहे हैं, खलीफा अरशद बहुत करीबी, वो क्या था, हुकूक की इबाद के बारे में था। अब देखिए जरा तफसीर देखें, तहरीर देखें, उनकी किताबें देखें, हदीस देखें, फिक्र देखें, और इनके उनका जो खास खलीफा है वो ये बात कर रहा है, उनकी जिंदगी में जो फिक्र था सबसे ज्यादा, तमाम चीजों से ज्यादा, वह हुकूक की इबाद के बारे में था, लिखे हैं किताबें, इसलिए खुद उनको पता था। और रोजे क़यामत की एक सजा, मुझे बताएं आप कहां गए, हम कहां गई चीजें, कहां गई आज की बनावटी बातें, कहां सब बनावट नजर आते हैं इंसान, जिस वक्त बातन का शीशन सामने देखता है वो बनावट नजर आता है। मेरे हजरत जो मुझे हुक्म फरमाया कि तुम जाके जिक्र असकार करो, तो मकसद उनका यही था। आज भी मैं आपको उनके मकतूबात दिखा सकता हूँ, अशात हुई है हर खत में जो मुझे उन्होंने हजरत ने जो मुझे तंबीह फरमाई हर खत में, तो यही था अपने साथियों के साथ बैठना है, अपनी भी बातन की सलाह करनी है, उनका भी फिक्र करना है। आपको हर खत में दिखा सकता हूँ, कहीं ये नहीं कहा कि तू कुतुब हो गया, तू अब्दाल हो गया और तू उनको भी कुतुब अब्दाल बना दे, तुमको मशहूर कर दे, तुमको ये कर दे, तुम खिलाफत दे दे, कहीं दे दे, बिल्कुल नहीं। सबसे बड़ी चीज कि तुम उस मुल्क में गए हो, वहां याद रखना गैरों में तुम गए हो तो वहां इखलाक को ज्यादा तुमने दिखाना है, उनको ज्यादा मरगूब करना है कि पता चले एक मुसलमान कितना अच्छा मुसलमान होता है, उसकी जिंदगी कैसी होती है। तुम उनके मुल्क में गए, उनको तकलीफ ना पहुंचे, खुदा की किस्म में दिखा सकता हूं कि वहां जाके तुमने तहाद मोहब्बत इत्तफाक फैलाना है, फिक्र ना करना उन्हें कोई इख्तलाफ हो या कैसी बातें हो उनके मुल्क में, तुम उनको बर्दाश्त करना। और फिर मिसाल उनके खत में मैं दिखा सकता हूं, मिसाल दी कि नबी अकरम तशरीफ लाए तो उस वक्त क्या हाल था अरब का, अरब में जो हाल था बहुत इख्तलाफ था, तो याद कर तू उस मिशन पर जा रहा है, तूने वही काम करना है, नबी वाली इशात करनी है, नबी वाला दीन फैलाना है, वहां ये नहीं देखना कि यहूदी है ये काफिर फला, नहीं, सबको मोहब्बत का पैगाम तूने पहुंचाना है। हजरत ने मुझे इस तालीम के साथ यहां भेजा था, सख्ती से मना किया था कि किसी के झगड़े में ना पड़ना, किसी के लड़ाई में ना पड़ना, किसी के किसी जमात में शामिल ना होना, किसी ग्रुप में शामिल ना हो, किसी के साथ मैंने एक जमात के साथ शामिल उस जमात में शामिल होगा, नहीं, तुम्हारा काम सिर्फ एक होगा जिक्रुल्लाह और सुन्नत रसूलुल्लाह, जिससे इंसान के हालात समझे, अपनी भी फिक्र करनी है और अपने साथियों की करनी है, क्योंकि वो ऐसी जगह पे गए हुए हैं, जवान लोग ऐसे गए कि वो भूल जाएंगे अपने अखलाक को। कितनी अच्छी तालीम थी शख्स की, कहां वो 3000 मील कच्ची सी मस्जिद के अंदर, जहां कच्चे मकान कच्ची मस्जिद इस तरह मुर्गी फिर रही, वहां से मैसेज दे रहा है पूरी जमाने को बैठ के, इसको कहते हैं अल्लाह वाला, इसको फिक्र होता है उम्मत का। वो तो मुझे कहता जा यार तू वहां जा, खानका बना, पैसे कमा, मुझे पैसे भेजना, फना करना, ये करना, चंदा करना। इतना सख्त खत आया हजरत का, मेरे पास तहरीर है हजरत की, कि खबरदार जो किसी चंदे की बात की या चंदा मांगने की कोशिश की या चंदे की तरफ गया या किसी से तुमने बात की, हमारे बुजुर्गों का इस्लाफ का ये तरीका नहीं है, अगर तुमने ये काम किया तो सारा फैज खत्म हो जाएगा। ये तरबियत थी कि खबरदार जो पैसे का, फकीर ने आज तक यही किया, जितनी मस्जिदें बनाई जितनी मस्जिदें बनी कोई मेरे पास हिसाब किताब नहीं रहा, आप किसी भी जात से पूछ लें। तभी बास हजार कभी आते हैं बेचारे चंदा मांगते हैं तो मैं मजबूर हो जाता हूँ, वो यकीन नहीं करते इस बात का कि भाई इतनी बड़ी जमात है आप चंदा लेके दें, मैं कहाँ से चंदा लेके दूँ, जो कुछ मेरे पास है मैं तो दे सकता हूँ लेकिन मैं लोगों से नहीं अपील कर सकता, क्योंकि मेरे हजरत का मिशन ही नहीं था पैसा ना लेकर आना किसी हालत। तो ये सब बताने का मतलब ये कि हमारे असलाफ की जो जिंदगी थी, जो गम था, जो फिक्र था, चाहे वो जिक्र हो, चाहे वो अस्कार हो, चाहे वो खानकाएं हो, चाहे जुमेरात का जिक्र हो, चाहे जुम्मे का जिक्र हो, हफ्ते एक ही गम था कि क्या कि अपने बातिन को इतना साफ करो कि जब तुम कल कब्र में जाओ तो कोई गुनाह अंदर नजर ना आए। इसका इंसान बन जाओ, तो ये इतना बड़ा गुनाह भाई, इस पर हमें कोशिश करनी चाहिए, आज वादा करें अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला तो बहुत बड़ा गुनाह है, तो बड़ी रुसवाई है इस चीज की, हमने फिक्र ही नहीं किया, कोई निकलना मुश्किल नहीं। आज हम अल्लाह से वादा करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कल से अल्लाह ताला कोशिश करें अल्लाह ताला निकालना शुरू कर दे, जबान को कंट्रोल करें। जिक्र इसलिए तो किया जाता है कि जबान हिले ना, किसी बात में गमी ना देखे, जब किसी ऐप की बात करने लगो तो एक एक बताता हूं तरीका आप, बड़ा आसान, जब किसी की ऐप की बात करने लगो तो फौरन अपनी तफसीर तेरे में कितने ऐप हैं, नंबर दो, अगर तुझे कोई ये बात करेगा तुझे गुस्सा आएगा नहीं आएगा, कोई उंगली भी कर दे तो तुझे गुस्सा आ जाता है, कोई तेरे बालों की मांग को कह दे यार टेढ़ी हो, तू कहा तू कौन है टेढ़ा करने वाला, अब कभी कोई सफेद बाल नजर आए तो कह दे तेरे सफेद बाल है, तो उस पर गुस्सा है, तू मुझे बूढ़ा कह रहे चाचा कह रहे, अपना तो ये काम और दूसरे के बैठ के पीछे बातें करना, कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है। छोटी मिसाल नहीं, मैं आपको बहुत बड़ी मिसाल देता हूं, उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला कौन है, ये अज़वाजे मुतहरात में से है, उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, ये इनकी निकाह का भी मामला ऐसा है कि अबू सलमा जो थे इनके खाविन थे, साहबी थे रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, तो उनका इंतकाल हुआ, ये हमला थी। जब हमला पूरा हो गया और जब बच्चा भी हो गया, तो फिर हज़रत अबू बकर सद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को पैगाम दिया निकाह का, उम्मे सलमा को, तो उन्होंने इनकार कर दिया कि भाई नहीं, मेरे तो औलाद भी है, बच्चे भी हैं, और मेरी उम्र भी ज़्यादा है, तो मैं शादी नहीं करूँगा। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फिर नबी करीम सल्लम का पैगाम लेके गए कि सरकार दोस्तों आपसे शादी करना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा मेरी उजरात पेश फरमा दें, अगर पसंद कर लें तो ठीक है, मैं तो उम्र रसीदा औरत हूँ, मेरे बाल बच्चे हैं, ये सब साथ लेकर आऊँगी, अगर आपको ये पसंद है तो अल्हम्दुलिल्लाह, से बड़ी क्या चीज़ है। तो ये तो मुंतखब था सारी चीज़ें जो तो अल्लाह की तरफ से थी ना, नबी पाक ने अज़वाज थे, आपकी तो हर चीज़ अल्लाह की तरफ से थी, वो तो ज़ाहिर होना था। तो नबी पाक ने कहा कि हाँ, कोई आप सारे उज़र कबूल फरमा लिए। तो उसी वक्त आपने कहा, अपने बेटे से कहा, उमर नाम था, कि चल तू ही निकाह पढ़ा दे मेरे, ऐसे इतनी देर क्यों। तो उनके बेटे ने निकाह पढ़ाया। तो बड़े सिफात थी इनकी, नबी पाक अज़वाज में थी। लेकिन दो सिफत आपको बताता हूँ, एक तो ये मोहब्बत की, और एक ये कि आप बिनता मोहब्बत करती हैं नबी पाक से, ज़ाहिर है वो तो। अल्लाह अकबर। तो आपका ये खास वस्फ था कि आप नबी करीम सरसों की तर्ज में कुरान पढ़ती थी, खूब कुरान पढ़ती थी, और तर्ज वो होती थी जो नबी पाक में बिल्कुल उतार ली थी आपने। तो किसी ने पूछा कि सरकार जो है ना कुरान कैसे पढ़ते थे, कहता है मैं सुनाती हूँ, आपने पूरी पढ़ के सुना दी पूरी आयत बिल्कुल उसी तरह से नबी पर, यह आपका अंदाज था। और दूसरी चीज़ आपकी जो बहुत मशहूर थी, आपकी मोहब्बत की वजह से, कि हर चीज़ सरकार उसकी तब्बर के तौर पर जमा करती जाती थी, बिलखसूस मुए मुबारक आपने बहुत जमा की, सरकार दोस्म की जमा भी करती थी, और उसकी ज़्यारत भी कराती थी, मसनद अहमद के अंदर यह हदीस है, ज़्यारत भी कराती थी उसकी। तो बहरा बड़े ही फजाइल हैं आपके अल्हम्दुलिल्लाह, तो बहुत फजाइल हैं। तो उम्मे सलमा रदी अल्लाह ताला के पास एक औरत आई, कितने बड़े काशाएं रसूल की, मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ इस गुनाह पर। और आके कहने लगी कि उम्मे सलमा, मैंने आप तुमसे एक गुनाह के बारे में पूछ रहे हैं। कौन सा गुनाह? कहते गीबत क्या होती है, ये गुनाह कैसा है? तो खामोश हुई, कहते अच्छा, मैं इस गुनाह को क्या बताऊं, मैं तुझे एक किस्सा सुनाती हूं। किस्सा यह है कि एक दिन ऐसा हुआ, जुम्मे का रोज था, और नबी करीम सब जुम्मा पढ़ने चले गए या नमाज पर गए, जुम्मे की नमाज थी, किसी नमाज पर गए, तो मैं अकेली थी, तो मेरे जवाब से पास से एक और खातून आ गई, या तो वो भी अजवाज थी या कोई और खातून थी। कहते हम दो हो गए, हम तो जो बैठे तुमने बातें शुरू की, बात करते करते वो गोलमोल हो गया मामला। उसके बाद जब नबी पाक तशरीफ लाए घर के अंदर, तो आप दरवाजे पे खड़े हो गए, ये सुनने जरा बात गौर से, हम अपने हालात को देखें और हकीकत को देखें, वजूहात क्या हैं, छोटी छोटी चीज़ें, हमें ये जो छोटी चीज़ें हैं और ये देखें हैं क्या चीज़ें। ये सरकार दौसम दरवाजे पर खड़े हो गए, अंदर तशरीफ नहीं लाए, तो हम बड़े हैरान हुए कि यार रसूल तशरीफ लाए। कहते मैं अंदर कैसे आऊं, इस कदर वो है अंदर, और आपने अपने कपड़े मुबारक को जो था वो नाक पर रख लिया, बे इंतहा सड़े गोश्त की वो आ रही तुम्हारी इस जगह से, इस कमरे से। कहते हमने तो कुछ भी क्यों नहीं किया, कहते कुछ नहीं किया, अभी जो कुछ तुम कर रही थी वो सारा गोश्त तुम्हारे अंदर चला गया है, वो सड़ा गोश्त, फौरन क्या करो और अपने गले को साफ करो उसके साथ, पानी के साथ। फरमाया हमने क्या की, और फिर क्या जो किया, तो वाकई वो गोश्त के टुकड़े हमारे क्या के अंदर से नजर आए जो हम किए थे। ये कौन बता रही है? हाथ मोमिनीन बता रही है। तो फरमाया देख, ये तजर्बा था जो हमारे सामने हुआ, जिंदगी में गइबत कमाई ना करना, गइबत की तरफ ख्याल भी ना कभी करना चाहता। अब ये इससे आप ये सोचें कि कौन सा आज हमारा घर है जिसमें गीबत नहीं होती, कौन सी ऐसी दुकान है जिसमें हम खड़े हुए गीबत नहीं करते, खसूसन घर के अंदर। یہ دکھا دیا گیا کہ جس گھر کے اندر غیبت ہوگی وہ اتنی بدبودار جگہ بن جاتی ہے کہ وہاں کسی رحمت کا گزر ہی نہیں ہوتا. جبھی وہاں تشریف نہیں لائے تھے اندر, تو جب آپ تشریف نہیں لائے تو مجھے بتائیں وہ کون سی رحمت اس گھر میں آئے گی, چاہے کتنے دور پڑھیں, کتنے کچھ آپ حرکتیں کرتے رہیں, جو کچھ بھی کریں, کیونکہ مثال میں نے آپ کو دی ہے کس کی, قاشان رسول کی مثال دی ہے, تو معمولی چیز نہیں ہے. جب وہاں یہ رحمتیں ختم ہو گئیں اس گناہ کی وجہ سے, اور آپ بھی نہیں اندر جا سکے, تو مجھے بتائیں ہمارے گھروں کے اندر جو معاملات اتنے خراب ہوئے ہیں, جو اتنے قبرستان بنے ہوئے ہیں, جو سارا کچھ ہوا ہے, جو اتنی منوستیں پھیلی ہوئی ہیں, کوئی کام بھی صحیح نہیں ہے, تو اس کی وجوہات کیا ہیں؟ وجہ تو یہی بتا رہی ہے ساری حدیث کہ قرآن جو کہا ہے والا یکت باہد کرنا چاہیے گناہ. دیکھیں ابو بکر صدیق, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ, تھوڑا دل کرتا ہے میں اس گناہ کی طرف تھوڑا بتاؤں آپ, بات کروں آپ. ابو بکر, حضرت عمر رضی اللہ سفر میں تشریف لے گئے, ساتھ میں ان کے خادم بھی تھا کوئی, تو بعض نے اس کا نام لکھا ہے ایک جگہ, اس حدیث میں نے پڑھا ہے اس میں تھا اسلمان فارسی کا نام ہے, لیکن ایک جگہ نام نہیں لکھا, لکھا کوئی خادم ساتھ تھا, کوئی آدمی تھا خدمت کے لیے, بہرحال دونوں میں سے کوئی تھا, یا سلمان فارسی رحمۃ اللہ تھے رضی اللہ تعالیٰ, یا دوسرے کوئی بھی. تو سفر میں تھے تو ان کا کام یہ تھا, خادم کا جو تھا کہ تم نے کھانا بنانا ہے, خدمت کرنی ہے, پانی پلانا ہے, جیسے سفر کے اندر تم نے ہمارا تم نے کام کرنا ہے. تو جو رات ہوئی تو وہ کیا ہوا کہ جو وہ خادم تھے وہ سو گئے, ان کی آنکھیں نہیں کھلی, بڑے کناٹے مارتے رہے, تو صبح ان کو کیا ملنا تھا کھانا, تو ابو بکر صدیق اور عمر دونوں گئے, دیکھا سو رہے ہیں, تو ان کے دونوں نے یہی بات کہی کہ یہ تو بھائی بڑے ایسے سو رہے جیسے اپنے گھر میں سو رہا ہے, یعنی بے فکر ہو کے جیسے آدمی سوتے ہیں, بس اتنی بات کہہ کے آ گئے. ان کی جب آنکھ کھلی تو ان کا بھائی کھانا وانا تو نے کچھ پکایا نہیں, روٹی ہمارے پاس تو پڑی ہیں, اب ایسا کر سالن تو ہے نہیں, تو ایک کام یہ کر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پاس حاضر ہو اور عرض کر کے یہ روٹی ہمارے پاس ہے, اگر کچھ سالن آپ دے سکتے ہیں تو ہمیں عنایت فرما دیں, کچھ آپ کے پاس ہو تو تاکہ ہم روٹی کھا لیں. کہا ٹھیک ہے, وہ خادم صاحب سے چل پڑے, وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے گئے گھر میں, حاضر ہوئے. کیسے آئے؟ کہتے اس طرح حضرت عمر اور ابو بکر صدیق نے مجھے بھیجا ہے کہ ہمارے پاس روٹی تو ہیں, سالن نہیں ہے, سالن اگر آپ کے پاس تو ہمیں دے دیں. آپ نے فرمایا کہ ان سے جا کے کیا ہے کہ سالن تو تمہارے پاس تھا اور تم کھا چکے ہو, اب کس سالن کی تمہیں ضرورت ہے؟ مجھے مشکل جواب لے کے چلے گئے, انہیں پوچھنا تھوڑی تھا بھی سالن. کہتے جی وہ تو نبی ہمارے کہ سالن تو تم کھا چکے ہو, سالن تو تمہارے پاس تھا, سالن ہمارے پاس تھا, ہم کھا چکے, سمجھے نہیں, فکر مند ہو گئے. ان کہ چلتے ہیں ابھی پوچھتے ہیں کہ کیا اسٹوری کیا ہے. وہ دونوں لوگ حاضر ہو گئے نبی محمد دربار میں, کہنے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تو سالن مانگا تھا, ہمارے پاس تو کوئی سالن نہیں, جب بھی آپ سے عرض کی تھی سالن کی, ہم نے تو سالن کھایا ہی نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ تمہارے دانتوں سے میں اب بھی اس سڑے گوشت کی بو دیکھ رہا ہوں جو تم نے کھایا ہے. تم نے اپنے بھائی کی غیبت نہیں کی, تو اپنے بھائی کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ آرام سے پڑا سو رہا ہے. دونوں کام کے بیچارے اب اندازہ لگائیں کتنے بڑے آدمی تھے. جی ہم تو بہت بڑے آدمی ہیں, ہمیں اس چھوٹی سی بات سے تھوڑے گناہ ملے گا. یہ تو مثالیں میں نے آپ کو دی ہیں کتنی احتیاط کی ضرورت ہے. آگے سن, گھبرا گئے ہو تو کہنے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری معافی, ہماری توبہ اللہ کے واسطے, اللہ کے واسطے اللہ سے ہمارے لیے توبہ فرما دے, استغفار فرما دے, اللہ ہمارے سورہ کو معاف فرما دے. جواب سنیں, کہنے بات یہ ہے کہ میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا, یہ گناہ ہی تو ایسا ہے, اس گناہ کی سزا ہی ایسی ہے, کیونکہ حق العباد سے تعلق رکھتا ہے کہ جب تک اللہ معاف نہیں کریں گے اس گناہ کو, جب تک کہ وہ شخص معاف نہیں کر دے گا جس کی تو نے غیبت کی ہے. جاؤ, تھا تمہارا ملازم خادم, لیکن تم نے گناہ ایسا کر دیا کہ تم جا کے اس کی منت کرنی ہے, اس سے معافی مانگنی ہے, اس گناہ کو معاف کراؤ, تو تب جا کے اللہ سے استغفار کرو, اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ کو معاف فرما دے. دیکھا آپ, کہ لگائیں نا کان کو ہاتھ, انشاءاللہ آج کے بعد ہم یہ غیبت نہیں کریں گے. کرتے ہیں وعدہ, انشاءاللہ کچھ ہو جائے زبان کو نہ ہلے. اب بھائی ہوگی گناہ مارس, ٹھیک ہے, یہ تو دیکھیں دنیا کے اندر تو ذلیل کر ہی دیتا ہے یہ گناہ انسان کو, لیکن آخرت کی جو رسوائی ہوگی وہ تو بہت ہی بڑی ہے. یہ باطنی گناہ ایسے ہیں کہ جو
ये तो इस किस्म के हैं कि यहां नजर नहीं आते, वहां जाके बने नजर आएंगे, वहां पता चलेगा ये क्या बन गया। किसी के साथ जुल्म करना, ज्याति करना, मजलूम को मारना, खासतौर मजलूम औरतों को मारना, उनको गाली देना, उनको पटखाना, उन पर जुल्म करना, ये क्या समझते हैं? ये इसका कोई हिसाब नहीं होगा, ये तो वो, इसकी तो वो सजा है, अल्लाह ताला कहेगा मैंने माफी नहीं करना इसको। तो उस मजलूम से, उस औरत से, उस इंसान से जब तक वो तुझे माफ नहीं कर देगी तो वहां को माफी होगी, माफी तो यहां होती है। कभी ये देखिए कि मैं ये जुल्म कर सकता हूं और मुझे कोई रोकने वाला नहीं, अल्लाह की ज़ात बहुत बड़ी है, रोकना तो यहां भी कर सकती है, लेकिन ये हिसाब कहां रखा है? आखिरत में सब निकल जाएगा, इंसान को ऊपर नजर आएगा सारा। एक शख्स आएगा, हाजिर होगा दरबार में, उसके अमालनामे को खोला जाएगा और वो छुपा बैठा होगा क्योंकि मेरा भाई होगा, उसको पता ना नमाज पढ़ता था ना, मैं कोई रोजे में डंडी मारता था, मैं जनाब उधर निकल जाता था और किसी चीज में जाता था ना, मैं तबलीग में जाता था ना, कभी तालीम में बैठता था ना, इधर जाता था ना उधर जाता था, किसी नेक काम में मैं चलता ही नहीं था, मेरा क्या हिसाब होगा? वो डरते डरते जब अमालनामा खुलेगा तो देख रहा होगा, जब देखेगा अमालनामे, वाह रोने लगी हुई तो उसके अमालनामे में वो फैला जाएगा ना अमालनामा, इस तरह देखेगा है तहज्जुद, नमाज, जिक्र, असकार, उमरा, हज, मकबूल हर चीजें। या अल्लाह तेरा दरबार तो बहुत बुलंद है, गलती तो यहां हो नहीं सकती, नहीं ये मेरा अमालनामा कहां से आ गई, तो मैंने कुछ किया ही नहीं, मैं तो बिल्कुल चट आदमी था। कहता हाँ तो सही कहता है, अमल तेरा कुछ नहीं था, लेकिन फला फला शख्स जो थे तेरी गिबतें करते थे, उनके सारे माल तेरे पास पहुंच रहे थे, सब माल तेरे पास पहुंच रहे। और जितना जिस दर्जे का इंसान होगा, याद रखें जिस दर्जे के इंसान की हम गिबत करेंगे उसी दर्जे की सजा मौजूद है। छोटे इंसान की सजा गिबत की छोटी होगी उसी हिसाब से। यानी ये मुंह खोलना बड़े बड़े इंसानों के बारे में, ये खास जब से सोच ले आदमी कि किसके बारे में ये बात कर रहा हूं, किस चीज की मैं गीबत कर रहा हूं, इस इंसान जरा सोच दे इस चीज को कि किस दर्जे का ये आदमी है और किस दर्जे की मैं बातें कर रहा हूं उसके खिलाफ, और कैसे बातें कर रहा हूं। ये जो हम जब अपना मुंह खोला करें ना, तो उस आदमी की हैसियत को देख लिया करें कि किस आदमी की हैसियत में बात कर रहा हूं, एक आम आदमी है या ये वो बहुत ही अजीम आदमी है। अल्लाह के कुर्ब पे जो इंसान कितने दर्जे पे पहुंचा है, हम उसके खिलाफ बात कर रहे हैं, तो अंदाजा लगाए उसकी सजा क्या होगी, उसको उसके अब उसमें देना क्या कुछ पड़ेगा। तो जब उसको जनाब ये चीजें मिली तो कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन वो तो जन्नत है। अब दूसरा आदमी हाजिर होगा, बड़े आराम से आएगा, जनाब उसको तो बड़ी बड़ी चीजें थी उसके, तो अमाल नामे, अब जो उसने देगा अमाल, ये हदीस सुना रहा हूं, कुछ भी नहीं, चट टंपने किधर की सारी चीज, या अल्लाह ये मेरा ही है, कहा तेरे ही है जी, मेरे हज, मेरे उम्र, मेरे जिक्र, मेरी तिलावतें, मेरा फना, मेरा फना, मेरा फना। तूने मेहरबानी करता ना दूसरे इंसान के लिए, जिनकी तू गीबतें करता रहा उनके पास तेरे माल पहुंचते रहे, इससे उनके माल उनके पास पहुंच गया, तेरा खाली है, चल जहन्नुम की आग के अंदर चला जा। दुनिया के अंदर तो हाई तबाही, और आखिरत में कितनी बड़ी रुसवाई, इस गुनाह की अंदाजा लगाया। अशद मिन ज़िना, इसको हदीस में आता है, कहते ज़िना से भी ज्यादा शदीद चीज है गीबत जो करना है, गीबत अशद मिन ज़िना, लफ्ज है हदीस की। तो भाई तो आज तौबा कर ले करने, मैं सच्ची तौबा करनी पड़ेगी इस पर, तो अल्लाह कहता है वत्तकुल्लाह इन्नल्लाह गफूरु रहीम, ये आयत यहां खत्म होती है ना, यही कहना अल्लाह पाक ने वत्तकुल्लाह, कि ये गुनाह खत्म करना चाहते हो तो देखें अब कुरान क्या कह रहे हैं, वत्तकुल्लाह, ये गुनाह खत्म करना चाहते हो तो किसी अल्लाह वाले का हाथ पकड़ के तस्किया शुरू कर दो, वत्तकुल्लाह, ये जब तक खौफ खुदा दिल में पैदा नहीं होगा, दिल साफ नहीं होगा, कितनी तकीरें, कितनी वाद, कितनी दर्श, कितनी सब कुछ सुन लो, बंदर के बंदर ही रहोगे, फिर तुम गीबत करोगे। वत्तकुल्ला, इसके लिए अगर तुम बचना चाहते हो तो क्या है, वत्तकुल्ला, अपने दिल के अंदर किसी इंसान के पास बैठो, ऐसे इंसान के पास जो खौफ खुदा रखता हो, तो तेरे दिल में भी खौफ आएगा, जब खौफ आएगा तो ये गुनाह तेरे खत्म होंगे वरना नहीं होंगे। इस चीज को पकड़ के लोग अल्लाह वालों के मजलिसों में जाते थे, खलीफा बन नहीं जाते। इसलिए कहा गया कि ऐसी जगह पे शेख बनाओ जो तुम्हारे करीब हो, नजदीक हो, जो तुम्हारी हिफाजत करे, जो तुम्हें देखे। ये नहीं कि तुम रहते हो शुमाल में और शेख है आपका जुनूब में, क्योंकि वो बहुत बड़ा शेख है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ा शेख है, लेकिन हो सकता है तेरे मकसूम में छोटा ही इंसान रखा हो जिसके जरिए से अल्लाह ताला तुझे खुराक पहुंचा दे। और तुझे आम खाने से मतलब या गुठलियां गिनने से मतलब है? नशा मशहूर है ना, अगर आम खाने या गुठलियां गिननी और तुझे रुतबे देखने, तू अपनी फिक्र कर कि हो सकता है किसी मामूली इंसान से तेरी इसलाह हो जाए। लेकिन अगर नफ्स है, अगर तू इसलाह कराना नहीं चाहता तो फिर तो तू यही देखेगा जी बहुत बड़ा आदमी, ताकि मैं बताऊं मैं जी फलां का मुरीद हूं, हमारे शेख तो ये हैं ये हैं ये हैं, वो तो फला 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 है, ये है। और तेरा कोई हुआ अंदर अंदर वही का वही जानवर का जानवर, ये तो हमारा स्टैंडर्ड बन गया तस्किए का, ये किबर है तकबर है, यही एक बड़ी बीमारी है। कितनी बड़ी सीरियस चीज, संजीदा चीज को हमने मजाक बना लिया, हमने दुकानदारी बना ली, हमने दुकानदारी बना ली, इसको शोहरत का एक 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 मुंबा बना लिया उसको, कि मुरीद भी होंगे तो इस हालत में हमारी उसमें भी शोहरत हो, पता चले जी हम फला के मुरीद हैं, और हो कुछ भी नहीं, ना सफाई हो ना तस्किया हो, वहीं के वहीं बंदर के बंदर, वैसे ही गुना झूठ कीमतें जलन हसद मुकम्मल उनको मौजूद है हर चीज। अल्लाह से खौफ, वत्तकुल्लाह, अल्लाह ताला कहते हैं डरो अल्लाह से, अल्लाह से डर इंसान, खौफ कर, उसे कीमत में आएगा तो ऐसा ना हो तो तेरी गर्दन जो है तेरा मुंह पीछे पीट के लगाओ। अल्लाह वालों से जिनके दिलों में खौफ है, जो डर है, उनके साथ बैठो। अल्लाह कहते हैं कौन उमा सादकीन, तुम भी खौफ वाले बन जाओ। ये ट्रांसपेरेंट होता है, मुनकिस होती है चीज, किसी मुतकब्बिर के पास बैठोगे तो किबर आना शुरू हो जाएगी, किसी शोहरत के जो शोहरत का मुतलाशी है उसके पास बैठोगे तुम्हें भी शोहरत की ख्वाहिश पैदा हो जाएगी, जो माल कमाने के चक्कर में तुम्हें भी माल कमाने में, जिस रंग में बैठोगे उस रंग तुम पर आ गया, रंग उतर जाएगा। हाँ किसी ऐसे फकीर के पास बैठोगे जिसे ना माल की फिक्र ना किसी, उसका गम यह है कि जनाब हमारा बातिन साफ हो जाए, तो तुम में भी बातिन साफ होना शुरू हो जाएगा। तरीका है तब तो कुल्लाम, माफी मांग के तो दोगे इस तरीके से कि पहले किसी अल्लाह वाले के पास जाओ, किसी ऐसे इंसान के पास जाओ, फिर मुझसे माफी मांगो। इन अल्लाह गफूर, इंडीड, कि कैसे नहीं हो सकता अल्लाह तुम्हें माफ ना करे, अगले पिछले सब तुम्हारे माफ कर दो। सीधी तरह तौबा करे आदमी इस चीज से, तो हमें खेल तमाशा नहीं बनाना चाहिए, तो बहुत बड़ी चीज है, इससे माफी मांग लें। कैसे देखें किस तरह गीबत से हमने की है, की तो होंगी, अब नहीं की तो माफी कैसे हो। सुनो भाई तरीका, वो तो हुक्म तो जारी हो गया कि जिसकी गीबत की है क्या किया जाए, उससे उसके पास सीधा जाया दे कि भाई तेरी गीबत मैं कर चुका हूं, यानी कुछ तो उस अजाब से बचने के लिए ये जो रुसवाई है फिर भी कम है, गर्दन थोड़ी देर झुकनी पड़ेगी, लेकिन ये है कि इससे किबर भी खत्म होगा, गुना भी खत्म होगा, पहुंच जाए उस अजाब से बच जाएगा, यार मैंने आपकी गीबत की थी भाई तो मुझे आप माफ कर, इसको थोड़ा और आसान कर देते हैं। कि ऐसे भी हो सकता है कि जिस आदमी से आप मांगने जा रहे हैं तो वो चौड़ा हो जाए, अच्छा अब माफी मांगने आए हो, अच्छा तुम मेरी गीबत करते रहे हो, अब मैं तुझे करता हूं सही, ये भी तो हो सकता है ना मामला, इसका इलाज ये भी तो हो सकता है। वो जो है माफी मांगने गया, उसको गर्दन से पकड़ा, अच्छा बड़े दिन से तेरा इंतजार कर रहा था, अच्छा अब आया तुझे माफ करता हूं, तू ही मुझे कहता था फला, ये भी तो है, दूसरी तरफ भी तो है ना मामला, क्या किया जाए। तो फिर तो ये है जो संस्कार पास जाके ये ना गया कि माफी मांगने ये है, बड़ा आसान तरीका है, इससे भी एक दर्जा नीचे लेकर आऊंगा कि भाई मैं आपके पास आया हूं तो आपके हक के अंदर कोई ऊंच नीच हो गई है, हमारे से कोई ऐसी बात हो गई हो, ऊंच नीच हो गई हो आपके हक अदा करने में, हक देने में गलती हो गई है, तो माफ कर देते हैं उससे, तो उसको अब ये पता नहीं चलेगा कि क्या हक क्या क्या कुछ है, और आपका काम बन जाएगा। इससे भी नीचे आ जाते हैं एक और तरीका, ताकि इस गुना शुरू तो करें आज से काम, देखें कहां तक लेके आ रहा हूं आपको, बल्कि इससे भी एक और तरीका बता दूंगा। बड़ा एक आम फिक्रा है, जब हज पे जाते हैं उम्रे पे जाते हैं हम सब, आप एक बात करते हैं याद होगा आपको, फिक्र बड़ा काम का है, बात है बड़ी काम की बात है, गौर करें। अब आप उम्रे पे जा रहे हैं, हज पे जा रहे हैं, हज पे जा रहे हैं, क्या कहते हैं मिलने के, यार कहा सुनना माफ करना कहते नहीं, पता नहीं गुजराती में आप क्या कहते हैं, याद नहीं आ रहा, माफ कर कहा सुना माफ करना, यही कहते ना क्या। अब ये पता नहीं कि कितनी बड़ी बात और कितने बड़े गुनाह से आप बच रहे हैं, नियत कर लें कि जो गुनाह हम जो हमने गीबतें इसकी की है, जो हमने सब कुछ किया है, तो अब बेहतरीन मौका है गीबत का नाम लेते क्या कहें यार हमारा कहा सोना माफ करना, कह गया यार माफ किया किस्सा था, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सबसे आसान तरीका एक और नीचे ले आता हूं आप एक स्टेज पे और ले आता हूं नीचे, आज छूटे से वादा करते हैं गुनाह छूटेगा। अब देखो एक और नीचे ले आता हूं दर्जा, क्या उलमा कराम ने इसमें बहुत अच्छी गुंजाइश एक और निकाली है, क्या कि भाई अगर आपने किसी की गीबत की है और वो गीबत इस इंसान तक नहीं पहुंची, मिसाल मैं किसी से गीबत कर देता हूं, ठीक किसी इंसान की बात कर देता हूं गीबत उतनी बात कर देना, तो अब वो गीबत उस तक नहीं पहुंची, तो उलमा कराम ने गुंजाइशें निकाली है कि जब तक वो गीबत उस तक ना पहुंचे तो उससे पहले ही क्या करो कि अल्लाह से माफी मांग लो, तो तुम्हें वहां जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी फिर, समझा गई बात। अब हमें क्या पता कि मैं इसकी गीबत कर रहा हूं उस तक पहुंची पहुंची, हाँ अगर रिएक्शन आ गया वहां से कि यार पता लग गया कि उसने गीबत की है मेरी, ये बात उसने मेरे बारे में की है, फिर तो ये सारा प्रोसेस चलेगा। अगर आपके पास कोई मैसेज नहीं आ रहा कि ये बात आपने जो की है यार ये देखो शिकल देखो उस तक ये बात नहीं पहुंची और हम हमारे से शैतान ने काम करा दिया है, तो फिर यहाँ पर होता है कि फिर आप क्या करें अल्लाह से इस्तग़फ़ार तौबा कर लें और उसके लिए दुआ कर दें काम बन जाए। तो चार स्टेजेस हो गई अल्हम्दुलिल्लाह, किसी ना किसी से करना है कि हमने अल्लाह से माफ़ी मांग के अपनी नई जिंदगी को शुरू करें। आज शब जुम्मा है अल्हम्दुलिल्लाह, कल जुम्मे का सूरज निकलने वाला है, अल्लाह के फजल से जुम्मा का सूरज नूर के साथ निकलेगा, तो हम भी एक नई इस तरीके से अपनी जिंदगी को स्टार्ट करें कल, एक हमारी जिंदगी का भी एक नया सूरज निकले कि जिसमें इसके बाद कभी भी गइबत ना हो इंशाल्लाह। हम वादा करते हैं चीज़ के अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि इंशाल्लाह बिला वजह किसी आदमी की वजह है ही नहीं इसकी बात करने की, कोई जरूरत ही कोई नहीं, बस पूरे खामोशी से खामोशी अख्तियार करें और अल्लाह से दुआ करें और इस्तग़फ़ार करते हैं। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक नसीब करे।